تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى كا شكر ادا کرنے کے بعد میں اپنے محبوب اور عزیز بھائی جو یہاں مرکز الاثری میں ہیں بنگلور میں، میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں اس دعوت پہ. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ جس طرح اس نے ہمیں اس بابرکت مجلس میں اکٹھا کیا ہے، اسی طرح ہمیں آخرت میں اس کی جنت الفردوس الاعلیٰ میں اکٹھا کرے. اعلیٰ سرور متقابلین انہ سمیع مجیب. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس محاضرہ کا جو عنوان ہے وہ ہے والدین کی اطاعت کرنا اور اس کی اہمیت. اور یہ موضوع یقیناً ہر بندے، یعنی ایک موضوع ہے جو ہر بندہ پہچانتا ہے، اس کو پہچانا چاہیے کہ یہ موضوع کتنا امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پہ تدبر کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اس امت کے جو اسلاف تھے کس طرح اس بات پر توجہ دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کریم میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عبادت کو صرف اللہ کے لیے قائم کرو، عبادت کو صرف اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے قائم کرو، توحید کو قائم کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھو. علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، اور اسی طرح جو دوسری چار آیتیں ہیں قرآن میں جو اسی معنی کے ہیں، یہ ایک بات پہ نشاندہی دیتی ہے، اور وہ بات ہے کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنا حق کا ذکر کرتے ہوئے والدین کا حق کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب انہوں نے فرمایا کہ کون سے گناہ سب سے بڑا ہیں، گناہ کبیرہ میں سے سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقوق الوالدین. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ایک شریک بنانا، اللہ کے ساتھ ایک شریک ٹھہرانا، اور پھر اس کے بعد والدین کی حقوق کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا. اتنا بڑا اہمیت ہمارا دین دیتا ہے والدین کی اطاعت کرنے میں، والدین کے احترام کرنے میں، والدین کی عزت کرنے میں، اور والدین کی نافرمانی کرنے میں دین اسلام اتنی مذمت کرتا ہے کہ اشراک باللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبائر میں سے یہ گناہ کا ذکر کیا تھا کہ ہم اپنے والدین کا حقوق کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، ان کے پاس ایک بہت نفیس اور پیاری سی کی کتاب ہے الادب المفرد، یہ سب کو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے جیسے ہم دوسری کتابیں پڑھتے ہیں مختلف فنون میں اور مختلف سبجیکٹس میں، اسی طرح اخلاق اور آداب اور معاملات کے حوالے سے یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے، الادب المفرد۔ یہ کتاب امام بخاری کی جو صحیح ہے وہ اسے علیحدہ ہے۔ یہ جو کتاب ہے اس کا موضوع ہے، اس کا جو موضوع ہے وہ ہے اخلاق کے حوالے سے، آداب کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے۔ اور اس کتاب میں امام بخاری جو سب سے پہلا جو باب وہ باندھتے ہیں، بلکہ جو سب سے پہلے ابواب ہیں اس کتاب میں، وہ بر الوالدین کے حوالے سے ہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے ہیں۔ اور اس میں امام بخاری نے وہ حدیث نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کا ذکر کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر قائم کرنا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ثم ای، پھر اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم بر الوالدین، پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قلت ثم ای، پھر صحابی کریم نے فرمایا کہ پھر کون سا عمل اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ تو دیکھو جیسے شیخ زید بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے پہلے بر الوالدین کا ذکر کیا تھا، اتنی اہمیت ہے اور اتنا ضروری ہے ایک مسلمان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ بندہ سوچے کہ جہاد میں بندہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتا ہے، جہاد میں بندہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتا ہے، اور جب ہم وہ جہاد کہتے ہیں ہم شرعی جہاد کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم اس جہاد کے بارے میں نہیں بات کر رہے جو دہشت گردوں کی جہاد ہوتی ہے، جو ایک جھوٹی جہاد ہوتی ہے، جو شرعی جہاد نہیں ہوتی، وہ جہاد جو قرآن اور سنت سے مستند نہیں ہے، وہ جو دہشت گرد کرتے ہیں کہ وہ ایک ملک میں جس میں وہ رہتے ہیں یا جس میں وہ داخل ہوتے ہیں، ظاہری سی بات ہے ویزے سے داخل ہوتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے داخل ہوتے ہیں، تو پھر جیسے وہ اس ملک کے اندر داخل ہوتے ہیں یا جب وہ اس ملک کے شہری ہوتے ہیں، تو پھر ان کے درمیان اور اس ملک کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ ایک اگریمنٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اگریمنٹ کے بارے میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے جو عقود ہیں، اپنے جو اگریمنٹس ہیں، ان کو فلفل کرو۔ تو وہ شخص جو ایک ملک میں جاتا ہے یا ایک ملک کا رہائشی ہوتا ہے اور پھر اس ملک کے اندر قتل عام کرتا ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے جو اس کے ساتھ کوئی خلاف نہیں کرے، اس کو دین میں آزادی دے رہے ہیں، کوئی یعنی عام شہری ہوتے ہیں، ان کا جا کے قتل کرتا ہے، یہ بندہ جو یہ کرتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی آیت کریم پہ عمل نہیں کیا کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ وہ جو غیر مسلم ہیں، جو آپ کے ساتھ قتل نہیں کرتے، نہ ہی وہ آپ کو آپ کے گھروں سے نکالتے ہیں، آپ کو آپ کے شہر سے نکالتے ہیں، آپ کی جگہ سے نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا ان غیر مسلم کے حوالے سے جو آپ کے ساتھ قتال نہیں کرتے، نہ ہی آپ کو آپ کے گھروں سے نکالتے ہیں، آپ کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ انصاف کریں۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ तो वो लोग, चाहे वो ब्रिटानिया में दहशतगर्दी करते हों, वह अमेरिका में दहशतगर्दी करती हों, या इंडिया में दहशतगर्दी करते हों, या किसी और मुल्क में दहशतगर्दी करते हों, इस्लाम के नाम में वो इस दीन के पैगंबर के हिदायत, उसकी रहनुमाई से बिल्कुल जुदा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई गैर मुस्लिम के साथ जो रखना चाहिए वो एक है, और ये जो दहशतगर्द हैं, जो लोगों के कत्लेआम करते हैं, उनकी गुमराही कहीं और है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तीसरा सबसे महबूब अमल अल्लाह ताला के नज़दीक जिहाद अल्लाह ताला के राह में है, वो शरई जिहाद होता है। ये वाला जिहाद नहीं जो दहशतगर्द इस्लाम के नाम में करते हैं, मगर इस जिहाद से ज्यादा वालदेन की इताअत करना, वालदेन के साथ अच्छा सलूक करना। इमाम बुखारी इसी किताब में एक और हदीस की रवायत फरमाते हैं, बल्कि इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा की रवायत है, फरमाते हैं, रिदा रब फी रिदा अल वालिद व सखत अर रब फी सखत अल वालिद, के रब की जो रजा है, रब यानी जो परवरदेगार की जो रजा है, उसकी जो खुशी है, वो वालिद की रजा में है, और जो परवरदेगार की जो गुस्सा है वो वालिद की गुस्सा में है। यानी आपने अल्लाह ताला को राजी करना है, वालिद को राजी करो। वालिद को राजी करोगे शरीयत के हदूद के अंदर, तो फिर आपसे रब्बे कायनात आपसे राजी होगा। वालिद को गुस्सा दिलाओगे, और वालिद में वालदा भी शामिल है, वालिद को गुस्सा दिलाओगे तो फिर आपसे अल्लाह ताला गुस्सा होगा। क्यों? क्योंकि जो वालिद है वो ही है आपकी वजूद का सबब। जैसे शेख जैद अल मदखली ने बताया, आप इस दुनिया में कैसे आए थे? वालिद के जरिए। वालिद ने फिर आपकी परवरिश की थी, आपको पाला पोसा था, आपके ऊपर खर्चा किया था, आपके ऊपर उसने फिक्र की थी, फिक्रमंद हुआ था आपके बचपन में, हत्ता जब आप जवान भी हो गए, क्या वालिद का जो फिक्र होते अपने अपने बच्चों के हवाले से खत्म हो जाती है? वो फिक्रमंद उसके उसके दिल में फिर भी रहती है, चाहे उसका बेटा 80 साल का भी हो जाए, अगर उसका वालिद जिंदा है, वालिद फिर भी फिक्रमंद रहता है अपने बेटे अपनी बेटी के हवाले से। तो अगर आपने अल्लाह ताला को खुश करना है, उसका रिजा हासिल करना है, तो फिर अपने वालिद को खुश करें, अपने वालिद साहब को राजी करें। और जिस शख्स ने अपने रब को उसका गुस्सा दिलाना है, तो फिर अपने वालिद का भी जाके गुस्सा दिलाए। वो बंदा जो अपने वालिद का गुस्सा दिलाएगा, अपनी माँ का गुस्सा दिलाएगा, तो फिर उसकी हालत कैसे होगी जब रब्बे कायनात उसके साथ गुस्सा होगा। इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा के साथ एक वाकया हुआ जिसमें बयान होता है कि वालदेन में से वालदा के साथ, उसके साथ अच्छा सलूक करना कितनी अजीम और बुलंद मर्तबा रखता है हमारे दीन में। इमाम बुखारी अपने दूसरे बाब में बाब बांधते हैं, बाब बिर्रुल उम, कि बाब वालदा के साथ अच्छा सलूक रखना। हम सब लोग जानते हैं वो मशहूर हदीस कि जब बंदा आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उनसे पूछा कि कौन है जो मेरी सुहबत से ज़्यादा मुस्तहिक है, यानी मेरे मेरा मेरी अच्छी सुहबत, अच्छा सलूक से ज़्यादा मुस्तहिक है। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपकी वालदा के साथ अच्छा सलूक करना, आपकी वालदा। फिर उस शख्स ने फरमाया, फिर कौन? तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी वालदा। फिर उसने पूछा, फिर कौन? तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी वालदा। फिर पूछा, फिर कौन? फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर आपके वालिद। उलमाए कराम फरमाते हैं, तो ये उस बात के ऊपर निशानदेही देती है कि जो वालदा हैं, जिस हद तक उसके साथ अच्छा सलूक करने का फर्जियत है, वो वालिद से 3 गुना ज़्यादा है। अब देखें ये जो वाकया हुआ था इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ, किस तरह उस बात के ऊपर ताकीद देता है कि एक मरतबा एक बंदा, माजरतन इब्न उमर नहीं, इब्न अब्बास, इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा के पास एक बंदा आया। गौर से सुन इस बात पे। वो बंदा फरमाता है कि एक खातून थी, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस खातून से शादी करूं, लेकिन इस खातून ने मेरी ख्वाहिश को इनकार किया और फिर उसके बाद किसी और मर्द ने उस खातून का रिश्ता मांगा और वो खातून चाहती थी कि वो उस बंदे के साथ शादी करें। मैं गैरतमंद हो गया, मेरे अंदर हसद आई, तो फिर आखिरकार मैंने उस औरत को, उस खातून का जाके कत्ल किया। तो क्या मेरे लिए कुछ तौबा है, मेरे लिए कोई तौबा की गुंजाइश है? तो फिर इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क्या फरमाते हैं? क्या इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने यह कहा कि नहीं, तुम्हारे लिए कोई तौबा नहीं है, तुमने कत्ल किया, तुम तो बड़े मुजरिम हो, तुम्हारे लिए कोई तौबा नहीं है, तुम तो ये हो, तो फलाने हो, धमकाने हो? नहीं, इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने क्या कहा? उस बंदे को उम्मीद दी, जैसे उलमाए किराम का तरीका होता है, उम्मीद दी उस बंदे को। पूछा उससे, अउम्मुका है, क्या तुम्हारी वालदा साहिबा अभी तक जिंदा हैं? काला, बंदा कहता है नहीं। तो फिर इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, तुब इलल्लाहि अज़्ज़ा वजल वतक़र्रब इलैहि मस्तता। ये तरीका है उलमा का, लोगों को उम्मीद देते हैं, ना उम्मीद नहीं करते। माँ जिंदा नहीं है, अच्छा अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला की तरफ तौबा करो और अल्लाह ताला की तरफ नज़दीक हो जाओ, तकर्रब इलल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ नज़दीक हो जाओ, इबादत के साथ नज़दीक हो जाओ, इबादत के जरिए नज़दीक हो अल्लाह ताला की तरफ जितना ही तुम्हारी इस्तेताअत के अंदर है। उसके बाद जो इस रिवायत का रावी था, यानी जो ताबीई था, अता इबन यसार, उन्होंने जाके इब्न अब्बास से पूछा कि आपने क्यों पूछा कि उनकी वालदा जिंदा हैं? अब इस बात पे आप भाई गौर करें कि वो फरमाते हैं, इन्नी ला अअलमु अमलन अक़रब इलल्लाह अज़्ज़ा वजल मिन बिर्रिल वालिदा। मैं ऐसा कोई अमल नहीं जानता जो बंदे को अल्लाह ताला से नज़दीक लाता है, करीब लाता है, जितना एक बंदे को अपनी वालदा के साथ अच्छा सलूक करना लाता है। इतना अजीम मर्तबा है, इतनी फजीलत है अपनी वालदा के साथ अच्छा सलूक करने में। इसी तरह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, उन्होंने बयान किया वालदा के साथ अच्छा सलूक करने की फजीलत और किस किस्म के आमाल हमको करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हम अपने वालदा और उसके साथ साथ वालिद के अच्छे बच्चे, अच्छे उनके बेटे बने, अच्छे उनकी बेटियां बने। इब्न उमर रदियल्लाहु ताला ने किसी को कहा, अतफ़रक नार व तुहिब्बु अन तदखुल अल जन्ना, क्या तुम जहन्नम की आग से भागना चाहते हो, क्या तुम जन्नत के अंदर दाखिल होना चाहते हो? तो फिर जिसको वो ये बात कह रहे थे उसने फरमाया कि जी हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा, ई वल्लाह, अल्लाह की कसम यही बात है। तो फिर इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, अफ़वन, इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, अहय्युन वालिदुका, क्या आपके वालिद जिंदा हैं? वो फरमाते हैं, इंदी उम्मी, मेरी वालदा हयात है, मेरी वालदा जिंदा हैं। काला फवल्लाही लव अलंत लहल कलाम व अतअमतहा अत्तआम लतदखुलन्ना अल्जन्नत मज्तनबत अल्कबाइर। इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, अगर तुम अपनी माँ के साथ नरमी के साथ बात करो, उन्हें खाना खिलाओ, तुम यकीनन जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओगे अगर तुम गुनाह कबीरा से इज्तिनाब करोगे। इतनी फजीलत है माँ के साथ और उसके साथ वालिद के साथ अच्छा सलूक करना कि बस उनको खाना खिलाओ, अच्छी तरीके से बात करो, नरमी के साथ बात करो, उन्हें उफ ना को। उसके नतीजे में अल्लाह ताला उस शख्स को जन्नत में दाखिल करेगा। ये जो बात है वालिद और वालदा के साथ अच्छा सलूक रखने का, और हम सारे इस बात में यानी कुताया करते हैं, इसमें हम नाकिस हैं, इसमें हमारे अंदर डिफिशेंसी है, मगर ऐसे चंद बातें हैं, बल्कि दो बातें हैं जो आपके लिए और मेरे लिए वालिद और वालदा की इताअत करने में, उनके साथ अच्छा सलूक रखने में वो हमें मदद करेगा, उनके हक अदा करने में मदद करेगा। दो बातें हैं जिसकी तरफ हमको गौर करना चाहिए और उसे मद्देनजर रखना चाहिए। वो क्या है? सबसे पहले कि हम अपने जहन में रखें और याद रखें कि हमारे वालिद ने और हमारी वालदा ने हमारे ऊपर कितना एहसान किया है, हमारे वालिद ने और हमारी वालदा ने हमारे ऊपर कितना एहसान किया और कितने तकलीफ और दुख के थ्रू गए थे हमारी तरबियत की वजह से। इस बात को याद रखें, क्योंकि जब हम इसके बारे में सोचेंगे कि वालिद साहब ने कितनी परेशानियां मेरी वजह से बर्दाश्त की थी, जब हम सोचेंगे कि वालदा साहिबा ने मेरी खातिर कितना दुख बर्दाश्त किया था, तो ये चीज़ हमारे लिए एक सबब बनेगी और हमारे लिए एक इंसेंटिव बनेगी, हमें तशजीह देगी, हमें इनक्रेज करेगी वालिद और वालदा की इताअत करने में और उनकी फरमादारी करने में। सबसे पहली बात कि हम याद रखें और जहन में रखें कि क्या मेरी वालदा ने मेरे लिए किया था बचपन में, पैदाइश के वक्त, पैदाइश से भी पहले, और अब जवानी में भी वालिद ने मेरे लिए क्या किया था, कितना दुख उसने मेरे लिए उठाया था, कितनी परेशानियां उसने मेरे लिए मेरी खातिर बर्दाश्त की थी। ये सबसे पहला सबब। दूसरा सबब क्या है कि आप आखिरत को याद करें, आप आखिरत को याद रखें कि एक दिन आएगा जहां आप रब्बे कायनात, रब्बे आलमीन के सामने खड़े होंगे और आपने अपने वालिद और वालदा के हवाले से जवाब देना है। ये दो बातें बहुत जरूरी हैं। अगर हम इन दोनों बातों को मद्देनजर रखें तो ये हमारे लिए एक आना बनेंगी, हमारे लिए एक तशजीह बनेंगी, हमें मदद करेंगी वालिद और वालदा के हक अदा करने में। और ये जो दो बातें हैं अल्लाह ताला ने अपनी आयत करीमा में इनको इनका जिक्र किया है, जब अल्लाह ताला ने फरमाया ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير। कि हमने इंसान को ये वसीयत दी है उसके वालदेन के हवाले से, उसकी माँ ने उसको तकलीफ के ऊपर तकलीफ उसको अपने पेट में रखा था और फिर उसको 2 साल के लिए दूध पिलाया था। ये वसीयत अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये वसीयत मैं तुम्हें दे रहा हूं, अनिश्कुरली मुझे शुक्र अदा करो, वाली वालिदै का और अपने वालदेन को, इलैयल मसीर आखिरकार तुम्हारा ठिकाना तुम सारों ने मेरी तरफ लौटाना है, तुम्हारी मसीर मेरी तरफ है, यानी अल्लाह ताला की तरफ, यानी अल्लाह ताला की तरफ हमने लौट जाना है और अल्लाह ताला के सामने हमने खड़ा होना है और अल्लाह ताला को हमने जवाब देना है। तो ये जो दो बातें इस आयत करीमा में जिक्र की गई हैं, क्या आप पहले सोचें कि मेरी वालदा ने मुझे कितना मेरा दुख बर्दाश्त किया था। सबसे पहले मैं उनके पेट में था, हम सब लोगों ने देखा है कि कितना मुश्किल होता है जब हम अपनी बीवी को देखते हैं, कि जब हमारा बच्चा हमारी बीवी के पेट में होता है तो कितनी तकलीफ हमारी बीवी को बर्दाश्त करना पड़ता है, हमारी अहलिया को बर्दाश्त करना पड़ता है, बीमारियां को बर्दाश्त करना पड़ता है, नींद की कमी को बर्दाश्त करना पड़ता है, और फिर हम देखते हैं कि कितनी तकलीफ उनको बर्दाश्त करनी पड़ती है जब वो हमारे बच्चों को जन्म देते हैं। ऐसा तकलीफ जो हम मर्द हजरात हम इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद कितनी तकलीफ उस माँ को बर्दाश्त करनी पड़ती है जब वो उस बच्चे को दूध पिलाती है उन 2 सालों के लिए। उसके नींद पे असर होता है, उसके जहनी तवाजुन पे असर होता है, उसकी तबीयत पे असर होता है, उस पे वक्त उसके पास अब कोई वक्त नहीं होता। इसी तरह जैसे हमारी बीवियों को इन तकलीफों को बर्दाश्त करना पड़ा और करना पड़ता है, इसी तरीके से हमारी वालदा ने किया था हमारे लिए। इस बात को मद्देनजर रखें, इस बात को अपने जहन में रखें, इस बात को याद रखें, बल्कि इस बात को इसका बयान किया करें कि कितनी बड़ी नेमत है मेरे पास कि मेरी अल्लाह ताला ने मुझे वालदा दी थी और उस वालदा ने मेरी परवरिश की थी, मेरे अल्लाह ताला ने मुझे वालिद दिया था और वो जो वालिद है उसने मेरी तरबियत की थी, उसने मेरे ऊपर खर्चा किया था, उसने तकलीफ मेरी बर्दाश्त की थी। इस बात को मद्देनजर रखें, इस बात को दिल में रखें, क्योंकि ये आपको मदद करेगा, ये आपको हेल्प करेगा वालदेन की इताअत करने में। और उसके साथ साथ कयामत का दिन याद रखें, एक दिन आएगा जहां मैंने रब्बुल आलमीन को जवाब देना है कि क्या मैंने वालिद और वालदा का हक अदा किया था। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप देखें कि कैसे वो इस बात पर अमल करते थे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक मर्तबा वो एक सवारी पे थे, तो जब वो इलाके में दाखिल हुए थे तो जो अबू मुर्रा हैं जो उनके साथ सवारी पे बैठे हुए थे, उन्होंने फरमाया कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बुलंद आवाज में ये कहा। क्या कहा उन्होंने? बुलंद आली आवाज में उन्होंने कहा, अलैकिस्सलाम व रहमतुल्लाही व बरकातुहु या उम्मता, ए मेरी वालदा, तुम्हारे ऊपर सलाम, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमत, तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला की बरकात। और फिर वालदा ने जवाब दिया, वअलैकस्सलाम वरहमतुल्लाही वबरकातुहु, तुम्हारे ऊपर भी सलाम अबू हुरैरा, तुम्हारे ऊपर भी सलाम मेरे बेटा, तुम्हारे ऊपर भी सलाम, अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बरकात। फिर अबू हुरैरा ने क्या कहा? फरमाते हैं, रहिमकिल्लाहु रब्बैतनी सगीरन। याद रखते हैं अबू हुरैरा कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया। उस बात को मद्देनजर रखते हैं, दिल में याद रखते हैं। अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर रहम करे मेरी माँ, क्योंकि तुमने मेरी परवरिश की थी जब मैं छोटा था। तो फिर वालदा ने क्या फरमाया, या बुनैया व अंत फजज़ाकल्लाहु खैरन व रदिया अनका कमा बररतनी कबीरा, तुम्हें भी अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमा और अल्लाह ताला तुझसे राजी हो जा मेरे बेटा, क्योंकि तुमने मेरे साथ अच्छा सलूक किया था जब तुम बड़े हो गए थे। अबू हुरैरा ने क्या किया था? भूल गए थे कि मेरी माँ ने मेरे साथ क्या किया? भूल गए थे क्या? अबू हुरैरा ने ये सोचा कि मैं तो मुहद्दिथीन में अब शुमार हो चुका हूँ, मैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब असहाब में से हूँ, मेरी तो ये फजीलत है, मेरी तो ये फजीलत है, माँ का जो एहसान है, भूल गए थे? नहीं, आला सोत में यानी बुलंद आवाज में अबू हुरैरा ने ऐलान किया अपनी माँ की जो एहसान, जो माँ ने एहसान उन पर किया था, बुलंद आवाज में उसका ऐलान किया, बुलंद आवाज में उसका इतराफ किया। तो वो हमारे लिए एक नमूना है, अबू हुरैरा हमारे लिए एक मिसाल है कि हमको क्या करना चाहिए, हमको याद रखना चाहिए अपनी माँ ने हमारे साथ क्या किया था, वालिद साहब ने हमारे साथ क्या किया था, उसका बयान करना चाहिए, उसका जिक्र करना चाहिए। जैसे हमारी माँ हमारे हमें बताती हैं कि उन्होंने हमारे यानी बताती हैं कि बचपन में हम कैसे थे, वालिद बताते हैं बचपन में हम कैसे थे, ये जब बातें हमें बताते हैं तो हमको इन बातों से फ़ायदा लेना चाहिए कि माँ ने हमारे साथ ये किया था। हमारी याददाश्त तो 3 साल की उम्र से पहले तो नहीं जा सकती, हमें तो नहीं याद उन्होंने हमारे साथ क्या किया था। मगर जैसे एक बंदे को बताया गया था कि वालदा ने उसको बताया कि जब तुम पैदा हुए थे, बल्कि तुम्हारी पैदाइश से पहले डॉक्टर ने बताया था कि अगर तुम पैदा हो के ये बच्चा पैदा होगा तो हो सकता हो कि तुम जिंदा ना रहो। माँ ने फिर भी कहा मैं अपने बच्चे को पैदा करना चाहती, इसको जन्म दूंगी। और फिर पैदाइश के बाद अल्लाह की तौफीक से दोनों हयात रहे, बेटा और माँ। माँ ने बाद में बेटे को बताया कि जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारी पैदाइश की वजह से मेरे नाखून गिर गए थे, तुम्हारी पैदाइश की वजह से मेरे दांत गिरने लगे थे, माँ के दांत चले गए थे, तुम्हारी पैदाइश की वजह से ये बीमारियां आई थी। फिर माँ ने क्या कहा अपने बेटे को, माँ ने कहा इट वॉज वर्थ इट, इट वॉज वर्थ इट। जितना भी मैंने तकलीफ बर्दाश्त की थी, मेरे नाखून चले गए, मेरे दांत चले गए, फिर भी इट वॉज वर्थ इट, तुम उस चीज के मुस्तहिक थे। ये एक मिसाल है, हर माँ की ये एक मिसाल है। हर माँ के लिए उसका बेटा, उसकी बेटी इतनी प्यारी, इतनी अजीज है कि वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो हमको इस बात को याद रखना चाहिए। और वो बंदा जिसे अल्लाह ताला ने उस नेमत से नवाजा है कि उसकी माँ अभी तक जिंदा है या उसके वालिद अभी तक जिंदा हैं, तो फिर उसको शोर होना चाहिए कि ये बहुत बड़ी नेमत है, और उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर उसके वालिद जिंदा हैं, वालदा जिंदा हैं, इस नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया वाला इन शकर तुम ला अजीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो फिर मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, इजाफा दूंगा। अगर हम अल्लाह ताला का नेमत को याद नहीं करेंगे, वालदेन की नेमत को याद नहीं करेंगे, उसको मद्देनजर नहीं रखेंगे, तो हमारे साथ क्या हो सकता है कि अल्लाह ताला वो नेमत हमसे छीन ले। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके वालिद अब जिंदा नहीं है, किस किस्म की तकलीफ दिन रात उनकी दिल पे किस किस्म की तकलीफ गुजरती है कि वालिद अब है हयात नहीं है, वालदा अब हयात नहीं है। तो जिसके पास वो नेमत अभी तक है, वालदा हयात है, वालिद हयात है, उस नेमत का शुक्र करें। ये सलफ सालिहीन का तरीका था। जैसे सुफियान इब्न उयैना और फुदैल इब्न इयाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, जो इमाम अश्शाफ़ी और इमाम अहमद उनके ज़माने में थे, उनके ज़माने में से थे, एक रात वो इशा की नमाज के बाद मुज़ाकरा करने लगे, यानी रिवीजन करने लगे, जैसे मुहद्दिसीन करते थे हदीस की रिवीजन रिवीजन करते थे, उसकी मुराजा करते थे, मुज़ाकरा करते थे। मगर इस रात फुदैल इब्न इयाद और सुफियान इब्न उयैना ने हदीस की रिवीजन नहीं की थी, उन्होंने इशा की नमाज से फजर की नमाज तक अल्लाह ताला की नेमतों का रिवीजन किया, उसका जिक्र किया। फुदैल इब्न इयाद कहता है कि अल्लाह ताला ने मेरे पर फला नेमत नवाजा है, ये नेमत दी है। सुफियान इब्न उयैना उनको कहता है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये नेमत दी है, ये नेमत दी है। ये यतज़ाकरानि निअम, अल्लाह ताला की नेमतों को याद कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर अल्लाह ताला की नेमत को याद नहीं करेंगे तो आप उनको भूल जाएंगे, और अगर आप अल्लाह ताला की नेमत को भूल जाएंगे तो फिर उस नेमत का शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं। जैसे उमर इब्न अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह ताला, उनके बेटे ने कहा कि जब ही मेरे वालिद किसी नेमत की तरफ देखते थे, अल्लाह ताला की नेमत की तरफ देखते थे, तो वो ये कहते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उबद्दिला निअमतका कुफ्रन औ अकफुरुहा बाद मअरिफतिहा औ अनसाहा फला उस्नी बिहा, कि अल्लाह ताला मैं तेरी पना मांगता हूँ कि तेरी नेमत का मैं कुफर करूँ, कि मैं उस नेमत के हवाले से नाशुकरा बनूं। मैं तेरी पना मांगता हूं कि मैं तेरी नेमत का इनकार करूं, पहचानने के बाद कि ये एक नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से, उसका मैं इनकार करूं, और मैं तेरी पना मांगता हूं। कि मैं तुम्हारी नेमत को भूल जाऊं, और अगर मैं उसको भूल जाऊंगा तो फिर मैं तुम्हारी तारीफ कैसे कर सकता हूंगा। तो बात कहने का मकसद ये है मेरे भाई, मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे कि हमको अपने वालिद और वालदेन की इताअत करनी चाहिए, और जो खैर उन्होंने हमारे साथ और एहसान हमारे साथ किया है इसको याद रखना चाहिए, और हमको उन भाइयों की तरफ देखना चाहिए जिनको जिनके वालिद और वालिदा अब हयात नहीं है। क्योंकि जब आप दूसरे को एक जब आप किसी को देखते हैं कि उसके पास वो नेमत नहीं है जो आपके पास है, तो आप उसकी ज़्यादा कदर फिर आप जाके करते हो, उसकी ज़्यादा अप्रिशिएशन करते हो, और फिर आप उस नेमत की ज़्यादा शुक्र अदा कर सकते हो, और उस शुक्र करने का नतीजा ये होगा कि अल्लाह ताला आपको उस नेमत में इजाफा देगा। और अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, और अगर मैं ऐसे नहीं करूंगा, और अगर हम अपने वालदेन के साथ अच्छा सलूक नहीं रखेंगे, तो जैसे कहा जाता है, खमा थदीन तुदान, खमा यदीन उल मर युदान, जैसे आप करते हो ऐसे ही आपके साथ किया जाएगा, जैसे सलूक आप रखते हो ऐसे ही सलूक आप ही के साथ रखा जाएगा। वो शख्स जो अपने वालदेन की इताअत करेगा, उनकी उनके साथ अच्छा सलूक रखेगा, उनकी इज्जत करेगा, उनके एहतराम करेगा, तो फिर आखिरकार उसके नतीजे में उसके बच्चे उसके साथ अच्छा सलूक रखेंगे, उसके बच्चे उसका एहतराम करेंगे, उसकी इज्जत रखेंगे। लेकिन वो शख्स जब अपने वालदेन की इताअत ना करे, उनका एहतराम ना करे, उनकी इज्जत ना करे, बल्कि उनकी हुकूक करे, तो हो सकता हो कि उसी के नतीजे में अल्लाह ताला उसे ऐसे बच्चे दे, ऐसे बेटे, ऐसे बेटियां दे जो उसका अदम एहतराम करेंगे, उसकी इज्जत नहीं करेंगे और उसके हुकूक करेंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि वो हमें तौफीक अता फरमाए अपने वालदेन का सही हक अदा करने में। इन्नहु समीउन मुजीब, वसल्लल्लाहुम्मा अला नबीना मुहम्मद, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व जज़ाकुमुल्लाहु तआला खैरा।
ज़ा ज़ा ज़ा